ओम शांति। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, हमें भी समय अनुसार अपनी जिम्मेवारियों को देखना है। जैसे मौसम बदलता है तो हम मौसम अनुसार कुछ न कुछ परहेज करते हैं, चाहे हम मौसम अनुसार खान पान की परहेज करते हैं, चाहे रहन सहन की परहेज करते हैं, क्योंकि मौसम बदल गया। इसी तरह समय बदल गया, युग बदल गया, और अब फिर से युग बदलने का समय आया है। और इस समय को देखते हुए मन में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, चलता है कि नहीं चलता। और आपके पास तो समय का सबसे अच्छा आईना है, क्योंकि हर एक जो आपके पास आता है आपको दिखा रहा है कि कलयुग कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। आपके पास ही सबसे ज्यादा आता है, कलयुग आपके पास आता है, अर्थात समाज में क्या क्या कोई कर सकता है जो किसी की सोच के भी बियॉन्ड है, वो कर्म कोई कर सकता है, वो सारे कर्म समाज के आपके सामने आते हैं। एंड आई एम श्योर कभी ना कभी उसको देखते हुए मन ये कहता होगा कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि युग कहाँ तक पहुंचा है। तो जैसे आज सुबह है, दोपहर होगी कुछ समय में, फिर शाम होगी, फिर रात हो जाएगी। रात को सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा, सुबह के समय में सब कुछ अलग तरह से दिखाई देता है, रात को सब कुछ अलग तरह से दिखाई देगा। अंधकार होगा, अगर रोशनी नहीं होगी तो रास्ता नहीं पता चलेगा, और अगर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, अंधकार होगा तो कभी ठोकर भी लग सकती है, और कभी कभी तो दूसरे की गलती की वजह से भी हम गिर सकते हैं। ये सब कुछ अंधकार में होता है। इसी तरह सृष्टि पर भी सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, और जब रात होती है तो अज्ञान का अंधकार होता है। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी सोच सही है, कौन सी सही नहीं है, कौन सा कर्म सही है, कौन सा नहीं है, उसमें भी कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हम सही और गलत को परख नहीं पाते हैं। और इसी वजह से कभी कभी कोई ऐसा कर्म जो हमारे लिए सही नहीं है उसको भी हम सही समझकर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है यही तो सही है। और उसका क्राइटेरिया भी एक और होता है कि सभी ये कर रहे हैं तो यही सही होगा, तो हम भी करना शुरू करते हैं। तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए उसके लिए हमें समय की पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि हर समय में कर्म की परिभाषा को अंडरलाइन किया जाता है। तो जैसे सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, रात हुई, इसी तरह सृष्टि पर जो सुबह है उसको सत्ययुग कहते हैं, फिर सृष्टि पर जो दोपहर है उसको त्रेता युग कहते हैं, फिर जो सृष्टि पर शाम है उसको द्वापर युग कहते हैं, और जो सृष्टि पर जो रात है उसको क्या कहते हैं, उसको कलयुग कहते हैं। और इस समय कौन सा समय चल रहा है, इस समय घोर कलयुग चल रहा है, और घोर कलयुग भी अति को पहुंच रहा है। जब अति में अंधकार हो जाता है तो उसके बाद अंधकार को समाप्त होने का समय आ जाता है, क्योंकि सुबह होने का समय शुरू हो जाता है। तो अभी जो समय चल रहा है इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। जैसे जैसे दिन का सुबह का 4 बजे का समय हो, है ना, कौन कौन जग जाता है, कल आज कौन कौन जग गया 4 बजे, वेरी गुड। अगर आप अपने घर पे फोन करें और आप उनको कहें मैं आज सुबह 4 बजे जगा था, तो घर पे कोई कह सकता है आपको आधी रात को क्यों उठ के बैठ गए थे, तो आप कहेंगे नहीं रात नहीं थी, सुबह थी। तो वो कहेंगे सुबह थोड़ी होती है 4 बजे, आधी रात को उठ के बैठ गए, कुछ काम नहीं था करने के लिए आपको आधी रात को उठ के बैठ गए। तो ये कंफ्यूजन है कि ये सुबह है या ये रात है, इस सुबह और रात के बीच में कंफ्यूजन होता है। इसीलिए हमें क्लियर होना चाहिए कि अभी हम सृष्टि के जिस समय पर बैठे हैं हमारे लिए ये रात है या ये सुबह है, हमारे कर्म की क्वालिटी उस अनुसार डिसाइड होगी। तो इस समय कौन सा योग चल रहा है? घोर कलयुग चल रहा है, राइट? तो सृष्टि चक्र को एक घड़ी की तरह देखें, एक साइकिल है। सत्युग में हर आत्मा कैसी होगी? अब इसको विजुअलाइज करते हैं। आज सुबह आपने देखा कि हम सब आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आती हैं। परम धाम में कौन रहता है? आत्माएं भी परम धाम में रहती हैं और निराकार परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। इसलिए जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम किस तरफ देखते हैं? भगवान को याद करते हैं तो नजर किस तरफ जाती है? तो हम कहते हैं ऊपर वाला जाने क्या होने वाला है, तो हमें याद है कि वो ऊपर रहता है। मंदिर हमारी नजर के सामने होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने कि ऊपर से वो बताएगा कि क्या होता है। तो ऊपर वाला क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो परम धाम का रहवासी है। तो इसको एक सेकंड के लिए चित्र अपने सामने लेकर आए। एक घर है जहां परमात्मा भी रहते हैं, सब आत्माएं भी रहती हैं। और इसीलिए जब हम जीवन में परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं बस बस अभी जाना है, इस चक्र से सब निकल जाना है, इसमें बहुत दुख दर्द है। क्योंकि हमें भी पता है कि हम घर से आए थे और वापस भी घर जाना है, लेकिन कब आए थे और कब जाना है और कैसे जाना है, वो क्लैरिटी भी हमारे को होनी चाहिए। तो परम धाम से हम सब आत्माएं जब सृष्टि पर आती है, तो जब आत्मा फ्रेश सृष्टि पर आएगी तो आत्मा कैसी होगी? बिल्कुल सुबह सुबह हम कैसे होते हैं? बिल्कुल अभी अभी रेस्ट करके उठे हैं, कैसे होते हैं सुबह? एकदम फ्रेश, एनर्जाइज्ड, एकदम क्लीन, क्लियर। तो जिसको हम कहेंगे कि आत्मा रूपी बैटरी कैसे 100% चार्ज्ड, कैसे होगी आत्मा रूपी बैटरी? 100% चार्ज्ड, फुल, परफेक्ट, प्योर, पावरफुल। इस आत्मा को कहते हैं सोलह कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता। कैसे है देवी देवता आत्मा? सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण। सोलह कला संपूर्ण किसको कहा जाता है? जिसमें इतना भी कुछ, इतना भी। इसलिए जब कोई बिल्कुल सच बोल रहा होता कहते सोलह आने सच्ची बात है। जैसे इसे वो सोलह से थोड़ी कम हो गई, मतलब उसमें थोड़ा कुछ मिक्सचर किया है, तो सोलह आने सच्ची बात, सोलह कला संपन्न। तो इसी तरह आत्मा जब सृष्टि पर आती है तो वो परफेक्ट आत्मा होती है। जब आत्मा परफेक्ट होगी तो शरीर कैसा होगा? आत्मा परफेक्ट होगी तो शरीर कैसा होगा? परफेक्ट होगा। इसलिए सत्युग में शरीर को कहते हैं निरोगी कंचन काया। आज भी जब देवी देवताओं की मूर्ति स्थापन करते हैं, अगर मूर्ति थोड़ी भी खंडित होती है तो वो मूर्ति स्थापन नहीं की जाती है कि ये मूर्ति तो खंडित है, खंडित मूर्ति नहीं स्थापन हो सकती। क्यों नहीं स्थापन हो सकती? क्योंकि देवी देवताओं के शरीर खंडित नहीं थे, कुछ भी नहीं, रोग नहीं, बीमारी नहीं, दर्द नहीं। कलयुग में शरीर कैसे है? कलयुग में शरीर कैसे है? हार्डली कोई मिलता है जो बिल्कुल परफेक्ट है ऑलवेज। अब तो बच्चों को भी बीमारी हो जाती है इतनी कम आयु में, कई बार तो बीमारी के साथ ही पैदा होते हैं। ये होते हैं कलयुग के अंत के साइंस। कलयुग का अंत मतलब सत्युग का बिल्कुल ऑपोजिट, हर चीज बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो सत्युग में हर आत्मा सोलह कला संपन्न, सर्व गुण संपन्न। कलयुग में टेंशन, दुख, अर्थ नॉर्मल नॉर्मल है, हर एक के पास है। एक 5 साल का बच्चा भी कहता है मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तो बचपन में भी अभी वो सर्व गुण संपन्न नहीं है, क्योंकि उनको भी वो कमजोरी का, दर्द का, उन विकारों का अनुभव हो रहा है। तो बिल्कुल आप देखेंगे हर चीज जो सत्युग में है कलयुग के एंड पे उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। जब आत्मा परफेक्ट होगी और शरीर परफेक्ट होगा तो प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति परफेक्ट होगी। उसको कहते हैं सतो प्रधान प्रकृति। कलयुग में अभी एंड में आके प्रकृति कैसी हो गई है? उथल पुथल, हलचल हलचल। आपने आज सुबह प्रकृति को शुक्र किया आपको एसी देने के लिए? दिया कि नहीं दिया? हाँ, गर्मी किस किस को लग रही थी कल? हाँ, तो फिर परमात्मा के घर बैठे है ना, उसको बोला गर्मी लग रही है, उन्हें कहता था लो ठंडक करो अभी अच्छे से। तो प्रकृति का भी शुक्रिया। तो जब ऐसी दुनिया होती है जिसमें आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, प्रकृति परफेक्ट, इस युग में परमात्मा बताते हैं कि इस युग में एवरेज एज 150 वर्ष की होगी, मतलब हम एक कॉस्ट्यूम में 150 वर्ष के लिए रहेंगे और फिर उस 150 वर्ष के बाद भी बीमारी नहीं आएगी उस शरीर के अंदर। लेकिन अभी हमारा टाइम इस शरीर में पूरा हो गया, आत्मा अपनी चॉइस से एक शरीर छोड़ेगी और दूसरा शरीर लेगी, जैसे हम ड्रेस को छोड़ के दूसरा ड्रेस लेते हैं। सत्युग में जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेगी तो आसपास के लोग रोएंगे, परिवार रोएगा नहीं, क्या करेगा परिवार, क्या करेगा, रोएगा जब वो नया शरीर लेंगे नहीं, क्या करेगा, सेलिब्रेट करेंगे कि इतनी सुंदर जीवन जी, अब वो सुंदरता को लेकर अगले कॉस्ट्यूम में जा रहे, एक नवीनता की जर्नी का बिगिनिंग होता है वो। तो ऐसे करते करते अब इसको विजुअलाइज करना, आत्मा परम धाम से आती है, एक शरीर लेती है, 150 वर्ष उस शरीर में रहती है, वो युग सत्युग है, मतलब परफेक्शन के अलावा कुछ और है नहीं। उस युग में एक धर्म होता है, एक भाषा होती है और एक ही राज्य होता है, और धर्म अर्थात आत्मा का धर्म, पवित्रता धर्म होता है, शांति धर्म होती है, प्यार धर्म होता है, और वो धर्म हरेक के कर्म में होता है। अब आत्मा एक शरीर लेती है, 150 वर्ष के बाद छोड़ती है, दूसरा लेती है, 150 वर्ष के बाद छोड़ती है, तीसरा लेती है, समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, दोपहर होनी शुरू हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी आत्मा की प्योरिटी क्या होने लगती है, बैटरी यूज करते करते क्या हो जाएगा, थोड़ी सी धीरे धीरे कम होने लगती है, त्रेता युग शुरू होता है। त्रेता युग में भी 14 कला होती है, देवी देवता होते हैं, उसी को कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सत्युग त्रेता युग सनातन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म, मतलब पूरी सिविलाइजेशन, हर आत्मा देव आत्मा है। जैसे आज पूरी सिविलाइजेशन टेंशन में है ना, पूरी सिविलाइजेशन टेंशन में, ऐसे उस समय पूरी सिविलाइजेशन कैसी है, परफेक्ट है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है पूरी सिविलाइजेशन परफेक्ट है, हो सकता है, यस। जैसे आज पॉसिबल है कि पूरी सिविलाइजेशन परेशान है, तो उस समय पूरी सिविलाइजेशन परफेक्ट है। फिर और समय बीतता जाता है, आत्मा फिर शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, छोड़ती है, तीसरा लेती है, धीरे धीरे शाम होती है, अर्थात द्वापर युग होता है। सत्युग त्रेता युग में हम नेचुरल सोल कॉन्शियस होते हैं, हमें पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर को यूज करती हूं, मैं दूसरी आत्मा से बात करती हूं। कलयुग के एंड में हम नेचुरल क्या है, हम नेचुरली भूल चुके हैं कि मैं आत्मा हूं, इसको कहते हैं हम नेचुरल ईगो कॉन्शियसनेस में है, रोल कॉन्शियसनेस में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। आपसे अगर कोई पूछे आप कौन हैं, तो फिर आप क्या बताएंगे, नाम, रोल, पोजीशन। जब यहां से वापस जाएंगे ना मंडे, कोई पूछेगा आप कौन है, बोलना मैं आत्मा हूं, बोलेंगे क्या सीख कर आए वहां से अजीब अजीब बातें, बोलो हाँ मैं आत्मा हूं, ये मेरे शरीर का नाम है, ये मेरा रोल है, ये मेरे रिश्ते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आत्मा हूं जो इस रोल को प्ले करती हूं, मैं आत्मा हूं जिस रिश्ते को निभाती हूं। तो सत्युग त्रेता युग में नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस है। द्वापर युग शुरू शुरू होते होते बॉडी इतनी बार लिया छोड़ा लिया छोड़ा, धीरे धीरे बॉडी से अटैचमेंट शुरू होती है, और द्वापर युग अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस की शुरुआत। अभी जैसा बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, एकदम शुरुआत, जैसे हम कहेंगे ना 99 बुखार, अभी 105 है, 99 बुखार, एकदम शुरुआत। और जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस की शुरुआत होगी तो किसकी शुरुआत होगी, वाइसेस की शुरुआत होगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी शुरुआत होती है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अभी जैसा नहीं। और जैसे ही विकारों की शुरुआत होती है, परम धाम से पवित्र आत्मा इस सृष्टि पर आती है हमें ज्ञान देने के लिए कि तुम आत्मा हो, शांति प्यार तुम्हारा धर्म है, और हरेक अपनी उंगली कहां करता है, ऊपर करता है और कहता है परमात्मा ऊपर है, गॉड इज लाइट है, वो ऊपर वाला है, हम सब उसके बच्चे हैं। तो हरेक धर्म सिखाने आता था, लेकिन वो धर्म सिखाने आते थे, हमने कहा वो धर्म स्थापन करने आते थे। हमें टीचिंग से कनेक्ट करना था, लेकिन हम टीचिंग से कनेक्ट करने के बजाय किससे कनेक्ट हो गए? हम टीचिंग से कनेक्ट करने के बजाय किससे कनेक्ट हो गए? हम टीचर से कनेक्ट हो गए। टीचिंग हम सबको क्या कर देती? अगर हम टीचिंग से कनेक्ट हो जाते तो हम सब क्या हो जाते? हम यूनाइटेड हो जाते, क्योंकि टीचिंग हमें यूनिटी सिखा रही थी। लेकिन हमने कहा मेरा टीचर अलग, आपका टीचर अलग, तो मैं और आप क्या हो गए? अलग। तो हम एक्चुअली धर्म के नाम पे एक दूसरे से अलग हो गए। ये थी द्वापर युग की शुरुआत। फिर एक धर्म के अंदर भी अलग अलग टीचर आए, फिर एक अलग अलग टीचर आए तो एक धर्म के अंदर भी हर एक अलग अलग टीचर से कनेक्ट हो गया, तो उसके अंदर भी डिविजन 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 होने लगी। तो यूनिटी होती तो सत्युग शुरू हो जाता, लेकिन यूनिटी के बजाय क्या शुरू हो गया? डिविजन शुरू हो गया। और ऐसे करते करते एक एक धर्म स्थापक सृष्टि पर आए। हमने बहुत ज्ञान दिया, हमें उनको फॉलो किया, हमारी जीवन फिर भी संभली रही, लेकिन हम फिर भी कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई विकारों के वश चलते चलते हमारी बैटरी क्या हो रही थी? धीरे धीरे कम कम कम। विकार क्या हो रहे थे? धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे करते करते रात का समय आ गया, कलयुग आ गया। किस किस को लगता है पिछले 30 साल में और अब में भी फर्क है आत्माओं की स्थिति के अंदर? तो आप सिर्फ ये सोचो कि हमारे जीवन काल में 30 ईयर्स के अंदर, और 30 भी क्या, अगर पिछले 5-7 साल भी देखे उसमें और अब में भी फर्क है। तो अगर 20-25 साल में और अब में फर्क है, तो 5000 साल में और अब में कितना फर्क होगा, कितना फर्क होगा। तो वो करते करते आत्मा की स्थिति क्या हो गई? बिल्कुल डाउन। अब बैटरी कैसी हो गई है? बैटरी जो पूरी चार्ज थी, वो अब वो बैटरी कैसी हो गई है? अब वो बैटरी हो गई है ऐसी। स्वास्तिक लेकर आए अपने सामने, स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। कैसे बनाते हैं? स्वास्तिक का पहला भाग ऐसे है। स्वास्तिक चार भाग होते हैं और बिल्कुल इक्वल चार भाग होते हैं। पहला भाग ऐसे है। ये हमें सत्युग याद दिलाता है। सत्युग में हर आत्मा कैसी होती है? देने वाली आत्मा है, देव आत्मा है। तो हमें कैसा बनना है? हमें कैसा बनना है? अब ऐसा बनना है, देने वाली आत्मा बनना है। कल हमने देखा ना, हमने क्या बनना है? देवता बनना है, देने वाला, दाता बनना है। ये सत्युग है। और फिर हाथ कैसे हो जाता है स्वास्तिक में? नीचे हो जाता है। दूसरा हाथ कैसे है? नीचे। त्रेता युग मतलब आत्मा की प्योरिटी थोड़ी सी कम हो गई, तो देना क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। फिर त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, हाथ ऐसे हो जाता है। ऐसे मतलब हमने क्या करना शुरू किया? द्वापर मतलब द्वैत शुरू होता है, ड्यूअलिटी आ जाती है। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, ये ड्यूअलिटी शुरू हो जाती है। तो ये ड्यूअलिटी जब आती है, पहले हमें अच्छे से पक्का था, मैं आत्मा, ये आत्मा। अभी हम हर चीज में कॉन्शियसनेस चेंज होने लगती है, तो इसीलिए द्वापर युग शुरू होता है। तो हाथ कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है। ये क्या करना शुरू किया? क्या करना शुरू किया? मांगना शुरू किया। शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, ये द्वैत है। और फिर कलयुग में हाथ कैसे हो गया? चौथा पाठ कैसे है स्वास्थ्य का? कलयुग में हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। ये क्या करना शुरू किया? मारना शुरू किया। किसको मारते हैं सारा दिन हम? किसको मारते हैं सारा दिन हम? अपनी सोच से खुद को मारते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन से लोगों को मारते हैं, हम अपने शब्दों से लोगों को मारते हैं। फिर से एक बार हाथ करें, 1, 2, 3, 4। इसके बाद क्या आएगा? फिर से करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इसके बाद सुबह। सिंपल। क्या करना है अब? सिर्फ ऐसे से क्या बनना है? ऐसे बनना है। इसलिए कल हमने देखा अपने हर संकल्प में भी हर एक को क्या करना है? देना है, देना है, देना है। जब हम ऐसे हैं, हम कलयुगी आत्मा हैं। अभी हमें कौन सी आत्मा बनना है? जो आत्माएं सृष्टि पर सत्युग में आई थी, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, तीसरा छोड़ा, चौथा लिया, चलते गए चलते गए। अभी वो आत्माएं कहां होंगी जो सत्युग में आई थी? हाँ, कहां पर बैठे हैं? कौन सी कुर्सी पर? हाँ, हाथ उठाओ, कौन सी कुर्सी पर बैठी है सत्योगी आत्माएं? वेरी गुड। तो मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं सत्योगी आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? देने वाली आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसमें क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। सुना सबने? और हर बार हमने सुना और हमने कहा, अच्छा, वेरी गुड, नर ऐसी करनी करेगा जो नर से नारायण बनेगा, नारी से लक्ष्मी बनेगा। उसके बाद कुछ नहीं किया उसका। तो वो कथा इस समय की है। तो नर और नारी कौन है? हम सब कलयुग में। तो कलयुग में नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे, मतलब आत्मा कुछ ऐसा करेगी जो नर नारी से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मतलब कलयुगी आत्मा से सत्योगी आत्मा बनेंगे। कौन कौन रेडी है बनने के लिए? अच्छा, फोटो खींचो भैया इनकी, सर एक बार हाथ उठा ना, फिर से फोटो उनकी खींचनी है, उन्होंने हाथ उठाया, खींचो अच्छे से। हाँ, अब वापस जाने के बाद याद रखना है, मैं सभी आत्मा हूं। सत्युग कौन बनाएगा? हम ही तो बनाएंगे ना। एक और लॉ याद रखना है, कल हमने एक लॉ लिखा था, संग से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है। दूसरा लॉ है, संस्कार से संसार बनता है। तो कलयुग किसने बनाया? हाथ उठाओ, किस किसने कलयुग बनाया? हम सब ने कलयुग बनाया। तो सृष्टि को देखकर शिकायत नहीं करनी है, ये लोग दुनिया को क्या कर रहे हैं। याद रखना है, ये दुनिया भी हमने बनाई है। और सत्युग भी कौन बनाएगा? हमारे घर को नर्क कौन बनाता है? हम बनाते हैं। और अगर हम एक दिन बैठ जाकर कहेंगे, बस बहुत हो गया कले कलेश इतना इस घर के अंदर, आज से ये घर में क्या होगा? सुख शांति होगी। तो घर को स्वर्ग भी कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, कोई और नहीं बनाता है। लेकिन ये वाला जो समय है, जब बैटरी क्या हो गई है? बिल्कुल इतनी। और सत्युग में बैटरी, हाथ करो, अभी बैटरी कैसे हो गई है? इतनी। सत्युग में बैटरी कैसे चाहिए? अभी। कलयुग, सत्युग से कलयुग आने में धीरे 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 आते हैं। बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है फोन की? धीरे 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 धीरे, 24 घंटे भी चलती है एक बैटरी, धीरे 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 डिस्चार्ज होती है। चार्ज करने में भी 24 घंटे लगते हैं? नहीं। चार्ज कितनी देर में हो जाती है? एक घंटे में चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज हो रही है 24 घंटे से ज्यादा में, चार्ज हो रही है एक घंटे में। कैसे करते हैं एक घंटे में उसको चार्ज? वो एक घंटे में अपने आप चार्ज नहीं होती है, उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है, उसको पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह सत्युग में हम कंप्लीट परफेक्ट थे, धीरे 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 वीक हुए हैं। लेकिन वीक से पावरफुल धीरे धीरे नहीं होना है, क्योंकि साइकिल ऐसे नहीं जाने वाला है, साइकिल ऐसे जंप करने वाला है। तो इसीलिए इस समय अपने आप को चार्ज करना, खुद खुद को नहीं चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि खुद खुद को करना भी चाहेंगे लेकिन वायुमंडल में भी वाइब्रेशन बहुत नीचे की है। तो इस समय पर हमारे को चार्ज करने का एक ही तरीका है कि हमें पावर हाउस से कनेक्ट करना है। और पावर हाउस अर्थात आत्मा के लिए पावर हाउस कौन? परम आत्मा। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम सब अनुभव करते हैं कि याद करते समय भी बुद्धि मन किधर किधर चला जाता है, इधर उधर 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 जाता रहता है। तो मेडिटेशन अर्थात परमात्मा को याद भी करना, लेकिन एक विधि सीखना जिससे हम परमात्मा की पावर्स को कनेक्ट करके, परमात्मा की पावर को अपने अंदर भर के आत्मरूपी बैटरी को चार्ज करना शुरू करते हैं। तो ये वो वाला है जिसका हमने गायन द्वापर युग से सुना है कि जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं इस सृष्टि पर आऊंगा, और जब मैं इस सृष्टि पर आऊंगा तो कोठों में कोई, कोई में कोई ही मुझे पहचानेंगे। तो ये वो समय है जब निराकार परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और जिनका चित्र हम पीछे देख रहे हैं ये पहले स्टूडेंट हैं। ये ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ये पहले स्टूडेंट हैं। ये टीचर नहीं है, ये गुरुजी तो बिल्कुल नहीं है, ये पहले स्टूडेंट है। तो निराकार परमात्मा ने इनका आधार लेकर ये ज्ञान हमें देना शुरू किया। तो हर ज्ञान की पॉइंट जो आप यहाँ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, या जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, आप सेंटर पर जाएंगे, आप परमात्मा के महावाक्य मुरली के रूप में सुनेंगे, हम उसको मुरली कहते हैं, वो परमात्मा के उच्चारण किए हुए महावाक्य हैं। तो अगर हम आत्मरूपी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत है। एक, रोज परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को सुनते जाना। सुनने से सोच बदलती है, सुनने से आत्मा को खुराक मिलती है। और दूसरी चीज, मेडिटेशन के पावर हाउस से कनेक्ट करने का तरीका सीखना। जब आत्मा बैटरी पावर हाउस से कनेक्ट होगी तो बैटरी क्या होती जाएगी, पावरफुल बनती जाएगी। तो हमें एक छोटी सी चीज करनी है यहाँ से जाने के बाद। जिस जिसने हाथ उठाया कि मुझे सत्योगी आत्मा बनना है, और अगर आपने बनना शुरू कर दिया, आप ये समझ लीजिए कि सत्युग तो कुछ सालों बाद आएगा, लेकिन आपने अगर आज से बनना शुरू कर दिया, आपके घर में सत्युग शुरू हो जाएगा। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है। बातें कलयुग वाली आएंगी, बातें तो कलयुग वाली आएंगी। वर्क पे प्रॉब्लम आएगी, शरीर में कभी कुछ ऊपर नीचे होगा, कोई सामने वाला बिहेव ठीक से नहीं करेगा, बातें कलयुग वाली आएंगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका सत्युग वाला हो जाएगा, क्योंकि सोल पावर बढ़ा ली है। कल हमने देखा ना, सामने से कोई कुछ भी करे, हमारा रिस्पॉन्स किसकी चॉइस है, हमारा रिस्पॉन्स किसकी चॉइस है, हमारी चॉइस है। तो जब मेरी चॉइस है और मेरी पावर बढ़ती गई तो मेरा रिस्पॉन्स अपने आप चेंज होने लग जाता है। पहले हम ज्यादा गुस्सा करते थे, फिर धीरे धीरे हमने कम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बहुत कम हुआ, फिर धीरे धीरे सिर्फ थॉट में ही कुछ चलता था और फिर थॉट में खत्म हो जाता था धीरे धीरे वो। सो इट्स अ जर्नी, एक वो जर्नी है जिसमें हमारी हर कमजोरी, हर विकार वो खत्म होने लगता है। और अनुभव ये कहता है कि हर घर में अगर एक का भी वो होने लगता है, घर बदल जाता है। घर में सबको चेंज होने की जरूरत नहीं होती है, एक के चेंज होने से घर का वायुमंडल बदलता है। आपने अनुभव किया कि आपने यहां कुछ नहीं किया, वायुमंडल ने आपको शक्ति दी, यस, सबको मिली, कल से आज डिफरेंट लग रहा है, यस। तो किसने दी, वायुमंडल ने दी। वायुमंडल किसने बनाया, किसी और ने बनाया। आप यहां से जाएंगे, आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, आपके चेंज से आपका घर का वायुमंडल बदलेगा। और जब आपके घर का वायुमंडल बदलेगा, आपके घर में रहने वाले बदलेंगे, आपके साथ काम करने वाले बदलेंगे, आपके पास जो केस लेकर आएंगे वो भी बदले हुए होंगे, मतलब डिफरेंट तरह के लोग आएंगे आपके पास। ये भी आप चेंज करना, देखना जिस वाइब्रेशन पे हम मूव करते जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो ही एनर्जी से हमारे पास लोग आते जाते हैं। ये एक नेचुरल चीज है। आपके फ्रेंड्स बदल जाएंगे, बहुत कुछ बदलता है, एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि तो हमारा बहुत कुछ चेंज होने लगता है, लेकिन वो सारा चेंज अच्छे के लिए होता है। तो अब रेडी हैं आप पक्का? उसके लिए क्या करना है, दो चीजें करनी है। यहां से जाने के बाद, आपने यहां आने में, ट्रैवल करके यहां आने में, तीन चार दिन रहने में और वापस जाने में, इस सब में आपने कम से कम 100-125 घंटे इन्वेस्ट किए हैं ना, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। यहां से जाने के बाद आपको 90 घंटे और इन्वेस्ट करने हैं। आप रेडी है 90 घंटे इन्वेस्ट करने के लिए सत्युग बनाने के लिए? और उसको आपको ये करना है, 3 महीने के लिए, मतलब 90 डेज के लिए, आप 1 घंटे के लिए सेंटर पर जाइए, जो आपके बिल्कुल 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे होगा। 10 मिनट के अंदर अंदर तो सेंटर है ही आपके घर के पास, आप जहां भी रहते हैं। ये परमात्मा की गिफ्ट है हम सबको कि हम जहां जहां रहते हैं हमारे नजदीक ही सेंटर खुलता है। कौन कौन 1 घंटा निकाल सकता है जाने के बाद? किसके लिए निकाल रहे हैं हम ये? ये हम खुद के लिए निकालेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट किसको होगा? सबको होगा एंड विश्व को होगा। और जब आप 1 घंटे के लिए वहां जाएंगे, आप परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे, धीरे धीरे आपको बहने वहां पे दीदियां जो हैं वो आपको राजयोग फिर से करना सिखाएंगी वन ऑन वन। अभी तो हम बहुत बड़े संगठन में सीख रहे हैं ना, आप अपने क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते हैं, वहां आप वन ऑन वन बैठेंगे बहनों के साथ, आप अपना हर क्वेश्चन पूछेंगे, आप हर क्लैरिफिकेशन लेंगे, वो आपको बार बार हर रोज थोड़ा 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 मेडिटेशन करना सिखाएंगे। 3 महीने में मास्टरी हो जाएगी और 3 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये निश्चय हो जाएगा कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको सिखा रहा है वो सर्वशक्तिवान है, इसीलिए आपके अंदर इतना चेंज आया इतने थोड़े टाइम के अंदर, आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से जाते समय आपको 3 चीजें करनी है। 1, यहां से जाने के बाद करना क्या है उसका डिसीशन लेना है। कल हमने कौन से डिसीशन लिए थे? फर्स्ट क्या डिसीशन लिया था? मैं आत्मा हूं, इसकी प्रैक्टिस करते रहना। सेकंड, बीच बीच में रुककर उस संकल्पों को रिपीट करना। तीसरा क्या करना? रात को सोने से पहले अपने कर्मों के हिसाब किताब को क्या करना? चेक, क्लियर एंड क्लीन करना। चौथा, भोजन खाते समय क्या करना? परमात्मा को याद करके करना। 5वां, अपने ऑफिस को क्या बनाना? नो एंगर जोन बनाना। इतने सारे होमवर्क तो कल के थे, ये बहुत छोटी छोटी बात है, बहुत सिंपल है, वैसे लगती बहुत सारी है लेकिन जब करना शुरू करो वो कुछ भी नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज की होमवर्क है, जाने के बाद हम 1 घंटा निकालेंगे। आप सुबह नहीं जा सके, आप शाम को जाएं, आपको जो टाइम सूट करे आप तब जाएं। बहनें हमेशा सेवा पर हैं, सिर्फ हमें अपना टाइम फिक्स करना और उनके पास जाना है। याद रखना, आने वाला समय आसान नहीं है, है ना? ये अभी दिख रहा है ना, जो विश्व में शुरू हो गया है, अभी वो शुरू हो गया है। रोज ऐसे न्यूज नहीं देखो वो कब खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया कि नहीं, थोड़ा टाइम चलेगा। तो अगले 10-15 साल आसान नहीं है सृष्टि के लिए, क्योंकि अगले 10-15 साल ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आना है। कलयुग अति, अति से अंत और सत्ययुग की शुरुआत, ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चलना है। इस समय पर जो भगवान से कनेक्शन बना के रख ले, जैसे होता ना मुश्किल समय इनसे कनेक्शन बना के रखो काम आएंगे, तो अब वो वाला समय आ गया है। किससे कनेक्शन बना के रखो? भगवान से बनो, काम आएंगे। क्यों काम आएंगे? 1, तो रोज सिखाएंगे कैसा सोचना है, क्या कर्म करना है। 2, उसको करने की शक्ति देंगे। 3, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा से एक पर्सनल रिश्ता बना के रखो, अपनी हर बात उनसे पूछो, अपना हर डिसीशन उनसे पूछ कर करो, अपना हर केस भी उनसे पूछ कर लो, ये वाला लें या न लें। अब वो समय है जो हम लॉजिकली सोचेंगे वो नॉट नेसेसरी राइट होगा। इंट्यूशन को यूज करना है, वो हमने कल देखा। इंट्यूशन से ऊपर भी एक और एनर्जी है कि परमात्मा के डायरेक्शन को कैच करो, वो बताएंगे ये करना है ये नहीं करना है। आपको लगता है परमात्मा पर्सनल आंसर दे सकते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स का? यस, कौन कौन हाथ उठा, परमात्मा पर्सनल आंसर दे सकते हैं? वेरी गुड। हमें सिर्फ क्या करना है? बात करनी है, पूछना है, क्वेश्चन करना है। परमात्मा को इंस्ट्रक्शन नहीं देना ये कर दो, ये नहीं, वो करना हमको है। पेरेंट को नहीं बोल सकते मेरा होमवर्क कर दो, लेकिन पेरेंट को बोल सकते मेरे साथ आके बैठो ना, मुझे होमवर्क करना है। फिर बीच में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आप बताओ ना थोड़ा सा कैसे करना है। होमवर्क हमको करना है, टीचर गाइड करता है, पेरेंट गाइड करता है, टीचर पेरेंट पावर देते हैं, लेकिन कर्म किसको करना है? मुझ आत्मा को करना है। लेकिन ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जहां हम बात करते हैं, हमें आंसर मिलता है, और कभी कभी तो हम पूछते नहीं तो भी मिलता है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, ऐसे डायरेक्ट आता है और सबको मिलता है। सब जो बात करेंगे सबको मिलेगा, क्योंकि वो आया ही इस कार्य के लिए है, वो आया ही इस कार्य के लिए है। अब ये सारे चीज में सत्ययुग बनाने के लिए हमें कौन सी चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा सारा दिन? फिर हमें सत्योगी आत्मा बनना है तो हमें सारा दिन कौन सी चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा? दो चीजें सिर्फ, अपने संस्कार और अपने कर्म। रिपीट करें, किस पर ध्यान रखना है? अपने संस्कार और अपने कर्म, क्योंकि हमें सोल पावर को क्या करना है? बढ़ाना है। अपने संस्कार और कर्म से ही सोल पावर क्या हुई? कम हुई है। और संस्कार और कर्म से ही सोल पावर क्या होगी? बढ़ेगी। और दो ही चीजें तो सिर्फ हमारी परमानेंट है, इटर्नल है, वो है हमारे संस्कार और कर्म। बाकी ये सब कुछ तो टेम्पररी है। इधर हाथ रखें, सेंटर ऑफ द ब्रेन, बाहर नहीं अंदर, मैं आत्मा रहती हूं। एक दिन ये शरीर काम का नहीं होगा, ऐसा होगा ना एक दिन के ये नहीं होगा, राइट? उस समय क्या होगा? मृत्यु होगी। किसकी मृत्यु होगी? शरीर की मृत्यु होगी। अंडरलाइन कर लो, मेरी मृत्यु नहीं होती। किसकी मृत्यु होती है? शरीर की मृत्यु होती है। ये ड्रेस पुरानी हो जाती है, ये टूट जाती है, ये फट जाती है, जो भी हो जाता है इसको। और आत्मा क्या करती है? आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। उसकी डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर है, वो मरती नहीं है। हम कहते रहते हैं वो मर गए, वो मर गए, वो मरते नहीं है, वो अमर है, वो आगे चले गए। कहाँ चले गए? आत्मा एक शरीर छोड़ती है और क्या करती है? दूसरे शरीर में, मां के गर्भ में प्रवेश करती है। कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा होता है। लोग कहते हैं बच्चा आया है तो उनको लगता है एक न्यू क्रिएशन आई है, है ना? और न्यू क्रिएशन कैसी होगी? हमेशा परफेक्ट होगी। लेकिन वो न्यू क्रिएशन नहीं होती, वो सिर्फ न्यू बॉडी होती है। तो बॉडी न्यू होती है, बच्चा न्यू नहीं होता है। क्या न्यू होता है सिर्फ? क्या न्यू होता है? सपोज आज आपकी ये ड्रेस फट जाए और आप ये ड्रेस को छोड़ दो और नई ड्रेस पहन लो, तो आप नई नहीं हो गए, सिर्फ आपकी ड्रेस नई हुई है। इसी तरह बच्चा मतलब बच्चा नया नहीं है, बच्चे की ड्रेस नई है। आत्मा कौन सी है? आत्मा कौन सी है? जो अभी अभी 100 ईयर्स के शरीर में थी, उसके पहले वो एक लंबी जर्नी पर और एक शरीर में थी। तो हमेशा याद रखना है, मैं और मेरे आसपास सारे जो हैं, जब इनको इस नजरिए से, इस समझ से देखेंगे तो लोगों को समझना आसान हो जाएगा, लोगों के साथ व्यवहार और कर्म करना आसान हो जाएगा। हम कैसे देखते हैं? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा एक रोल है। वो कौन है? वो कौन है? वो आत्मा है जो इस कॉस्ट्यूम में आने से पहले कहां थे? एक और कॉस्ट्यूम में थे। उससे पहले कहां थे? एक और कॉस्ट्यूम में थे। उससे पहले कहां थे? एक और कॉस्ट्यूम में थे। तो भले वो अभी 15-20 साल से आपके घर में रह रहे हैं, तो उनके पास आपके घर के सारे संस्कार स्वभाव आ जाने चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखोगे उनके कई संस्कार बहुत अलग होते हैं। होते हैं ऐसा? किस किस को लगता है हमारे बच्चों के कुछ संस्कार बहुत अलग हैं? और किस किस को लगता है हमारे दो बच्चे हैं तो उनके एक दूसरे से संस्कार और कर्म बहुत अलग हैं? तो फिर क्वेश्चन नहीं उठता कि वो इतने अलग कैसे हैं? तो उसका आंसर क्या है? कि वो सिर्फ इस घर में, इस परिवार में आने के बाद इकट्ठे हैं। उससे पहले वो बिल्कुल अलग थे, उनकी जर्नी बिल्कुल अलग थी। अब इस जर्नी पर हर कॉस्ट्यूम में, इसको ध्यान से देखें, हमारी जर्नी या उनकी जर्नी, इस जर्नी पर हर कॉस्ट्यूम में कितनी परिस्थितियां आई, कितने परिवार मिले, कितनी बातें हुई, कितने कर्म किए, कितने संस्कार बने होंगे। एक दिन के अंदर नहीं, एक घंटे के अंदर देखो कितने कर्म होते हैं। 100 वर्ष के अंदर कितने कर्म होंगे? उससे पहले पुराने कॉस्ट्यूम में थे 100 वर्ष कितने कर्म होंगे? उससे पहले पुराने वर्ष में थे? लंबी जर्नी के साथ आती है। अब अपने बच्चे को उस नजरिए से देखो, मेरा बच्चा नहीं, सोल ऑन अ जर्नी। क्या है वो? सोल ऑन अ जर्नी। तो वो अपनी इस जर्नी पर बहुत सारे संस्कार और कर्म लेकर आए हैं। कुछ हमारे से मैच करते हैं और कुछ हमारे से बिल्कुल अलग है। 5 फोल्डर है, लिख के रखें। आत्मा के 5 टाइप ऑफ संस्कार होते हैं, हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। जैसे एक फोन है, सबके फोन एक जैसे हैं, राइट? अभी अगर सपोज सबके पास सेम ब्रांड का फोन है, सेम मेक सेम वर्जन, सबके फोन एक जैसे हैं, लेकिन सबके फोन पे फाइल्स, सबके फोन पे फाइल्स अलग अलग हैं। अगर आपके और आपके बच्चे के फोन पे फाइल्स अलग अलग हैं, तो आप आत्मा और उस आत्मा के संस्कार और कर्मों की फाइल्स भी अलग अलग हैं। बहुत कम फाइल्स ऐसी होती हैं जो आपने एक दूसरे के साथ शेयर की थी और इसलिए दोनों फोन पे हैं, दोनों फोन पे हैं, बाकी सारी फाइल्स अलग अलग हैं। तो फर्स्ट फोल्डर पास्ट लाइफ संस्कार, मैं आत्मा अपने पूर्व कॉस्ट्यूम से उसमें परिस्थितियों के कारण जो जो संस्कार और कर्म बना के आती हूं, तो वो एक बहुत बड़ा फोल्डर होता है, उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, क्योंकि वो 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 जितने सालों से हम इस सृष्टि पर हैं, परम धाम से आए, चाहे हम सत्युग में आए, द्वापर में आए, कुछ त्रेता में आए, कोई कलयुग में आए, जिस युग में आए, एक बार इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सृष्टि पर रहते हैं, इसको पक्का करें। एक बार सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि पर रहते हैं, जब तक कलयुग का अंतिम समय नहीं आता है। जब कलयुग का अंतिम समय आता है, सारी आत्माएं फिर घर जाती हैं और फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार सृष्टि पर फिर से आती हैं। तो इसीलिए वो है पास्ट बर्थ संस्कार। दूसरा फोल्डर है पेरेंटल संस्कार, मतलब फैमिली से मिले संस्कार, परिवार से मिले संस्कार। तो हर आत्मा को परिवार के संग से, गर्भ से, गर्भ संस्कार बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो दूसरा फोल्डर है परिवार से मिले संस्कार। तीसरा फोल्डर है संग का रंग, एनवायरमेंट से मिले संस्कार। कौन से स्कूल में गए, कौन से लोकैलिटी में रहते थे, कौन हमारे दोस्त थे। अब आजकल के समय में फोन संग का रंग है, उससे भी संस्कार बनते हैं। इसलिए ध्यान से कंटेंट कंज्यूम करना, जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे संस्कार बनते हैं, और संस्कार से हमारा कर्म बनता है, और कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो कंटेंट से हमारा भाग्य बनता है। तो पहला था पास्ट बर्थ संस्कार, दूसरा था परिवार से मिले संस्कार, तीसरा है संग का रंग, चौथा है विल पावर, इच्छा शक्ति। ये पहले तीन फोल्डर में मेरा कोई भी संस्कार हो सकता है। आज हम डिसाइड करें और उस पर थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, तो हम अपनी विल पावर से कोई भी संस्कार चेंज कर सकते हैं। तो वो चौथा फोल्डर है। हर एक अगर चेक करे, हर एक ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, चाहे हैबिट्स में, चाहे नेचर में, वो सब उस फोर्थ फोल्डर के अंदर है। फिफ्थ फोल्डर, एक ही फोल्डर है जो हरेक आत्मा के पास सेम है, मतलब ये फोल्डर हरेक आत्मा के पास है। और ये फिफ्थ फोल्डर में सेवन संस्कार्स हैं, जो आपने कल सीखे थे कि हर आत्मा पवित्र है, शांत है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सेवन फाइल्स, प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, लव, नॉलेज, ब्लिस, सत्तो गुणी आत्मा। रिपीट करें हम सभी, प्योरिटी, पवित्रता, रिपीट करें, मेरे संस्कार ओरिजिनल कौन से हैं? पवित्रता, रिपीट करेंगे कौन से है? पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान, आनंद। ये है हमारी ओरिजिनल नेचर। जो व्यक्ति आपकी कोर्ट में आ जाए बड़े से बड़ा अपराध करके, उसके पास भी ये फिफ्थ फोल्डर है, बट उसके जो बाकी चार हैं उसमें कोई अलग चीज आई थी, जिसके वश उसने कोई कर्म किया है, लेकिन वो आत्मा भी ओरिजिनली प्योर, पीसफुल, पावरफुल, हैप्पी आत्मा है। ये एक ही फोल्डर है जो हर आत्मा के पास है इस सृष्टि पर। इसीलिए जब हम किसी से मिलते हैं, देखते हैं कि उनका संस्कार हमें ठीक नहीं लगता, कल हमने देखा जो दिख रहा है वो नहीं रिपीट करो। तो सपोज आपके घर में किसी के पास गुस्से का संस्कार है, कहां से आया? फैमिली से मिला होगा, या पास्ट लाइफ से आया होगा, या दोस्तों से बना। अब अगर हम उनको देख देख के ये बोलेंगे कितना गुस्सा करते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, तो वही वाला गाना क्या होता जाएगा, वही वाला गाना क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। आपके माइंड पे भी रिपीट होगा, उनके अंदर भी वो गुस्से का संस्कार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाथ ऐसे पकड़े, इस पे एक ब्लैक कलर का सर्कल बनाए। ये ब्लैक कलर का सर्कल मतलब कुछ अनकंफर्टेबल संस्कार, कोई संस्कार जो मेरी शक्ति को क्या आता है, कोई संस्कार जो उनकी शक्ति को घटाता है। अब वो जो ब्लैक सर्कल है वो संस्कार है, अगर हम उसी को रिपीट करते रहेंगे तो वो क्या होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा हमारे अंदर भी। मैं बहुत गुस्से वाला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो गुस्सा आ ही जाता है। कोई कहता है मुझे तो बात बुरी लगती ही है, कोई बोलता है मैं पैदा ही ऐसे हुआ था, चिंता तो मुझे होती ही है, कोई कहता है मेरा जोड़ियक साइन ही ये था, ये तो होता ही है। ऐसा नहीं है, उसको बोलते रहेंगे तो वो क्या होता जाएगा, वो ही रिपीट होता जाएगा। इसीलिए ब्लैक के ऊपर ब्लैक रिपीट नहीं करना। क्या रिपीट करना? कल से हम क्या कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। हम कौन से फोल्डर को एक्टिवेट कर रहे हैं? हम फिफ्थ फोल्डर को एक्टिवेट कर रहे हैं। हम ब्लैक के ऊपर व्हाइट कलर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोअर एनर्जी संस्कार पर हायर एनर्जी संस्कार क्रिएट कर रहे हैं। अब ये हमें सिर्फ खुद के लिए नहीं करना, हमें दूसरों के लिए भी करना है। कर सकते हैं? यस। क्या आप जाने से पहले एक छोटी सी लिस्ट बना लेंगे, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और जो आपके साथ बहुत क्लोज में काम करते हैं, उनका कोई भी एक अनकंफर्टेबल संस्कार है, आप उसके लिए एक ब्लेसिंग लिखें। अब हम क्या बन गए हैं, ऐसे बन गए ना, तो हमें उसके लिए एक ब्लेसिंग लिखनी है। ब्लेसिंग मतलब ऑपोजिट ऑफ जो वो है। कल हमने अपने लिए लिखा तो संकल्प से सिद्धि होती है, हमने अपने लिए लिखा, लिखे थे वो 10 संकल्प कल, यस। उसको रोज जाके रात को डायरी में लिखना जरूर है। अब उसी तरह एक एक संकल्प अपने फैमिली मेंबर के लिए लिखते हैं, जो संस्कार आप उनके अंदर चेंज करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये किसी की गलती नहीं है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति के वश वो संस्कार बनाकर आए हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसे क्यों हैं, क्योंकि हमें उनको उनकी पहले की स्टोरी नहीं पता है। आप अभी देखो इतना कुछ चल रहा है दुनिया में, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। सिर्फ अगर हम ये लास्ट सीन भी देखें एक आत्मा का इस कॉस्ट्यूम के अंदर। उस दिन मुझे किसी ने कहा कि जब मेरा बच्चा गर्भ में वो आत्मा आई तब मुझे कार में बैठने से डर लगने लग गया। अब इसका क्या मीनिंग है, उसके पहले कार में बैठना कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल। कहती है आत्मा आई गर्भ में, तो वो 3-4 चीजें बता रही थी जो जो चेंज हुआ उसके अंदर आत्मा आने के बाद, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी थी। तो उसमें उसने कहा ये आई ना, मुझे उसके बाद गाड़ी में बैठते ही एंग्जाइटी होने लगती है। क्यों हुआ, क्यों हुआ उस आत्मा के गर्भ में आने के बाद, क्यों हुआ कार में बैठने से एंग्जाइटी होती है, क्यों हुआ एंग्जाइटी, किसको हो रही है एंग्जाइटी? उस आत्मा को हो रही है जिसने गर्भ में प्रवेश किया। और उस आत्मा को कार में बैठने से एंग्जाइटी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? बिग चांसेस उस आत्मा ने कार की दुर्घटना में ही शरीर छोड़ा है, नहीं तो एंग्जाइटी क्यों होनी चाहिए कार में बैठने से? क्योंकि कार के साथ एसोसिएटेड मेमोरी और एक्सपीरियंस कौन सा है, पेन, लॉस, फियर, डेथ। अपने परिवार को खोते हुए देखा होगा, ट्रॉमा रिकॉर्ड हो जाता है आत्मा के ऊपर, और आत्मा उस संस्कार को लेकर नए गर्भ में प्रवेश करती है। इसीलिए अपने परिवार को अच्छे से देखो, किसी की कोई गलती नहीं है, कुछ न कुछ कभी ना कभी हुआ जिस वजह से वो कुछ अनकंफर्टेबल संस्कार लाए हैं। लेकिन अब हमारे पास पावर है कि हम राइट थॉट्स की एनर्जी क्रिएट करके उनके वो संस्कार को क्या कर सकते हैं। अब क्या उस बच्चे ने जीवन भर एंग्जाइटी क्रिएट करनी है कार में बैठ के? नहीं। अब उसको धीरे धीरे क्या सिखाया जाएगा कि कार इज अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस. धीरे बैठ के देखो देखो कुछ हुआ. न्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होता है तो ओल्ड एक्सपीरियंस की एंग्जाइटी क्या होती है, खत्म होने लगती है. दैट इज कॉल्ड ब्लैक पे व्हाइट रिकॉर्ड करना. लेकिन अगर उसके पेरेंट्स बार बार बोलते रहे इसको रहने दो, ये कार में बैठेगा तो इसको डर ही लगेगा, ये कार में बैठे, फिर वो जीवन भर कार में नहीं बैठ सकता है. और उसकी जो एंग्जाइटी सिर्फ कार की होगी वो एंग्जाइटी और चीजों में भी आने लग जाएगी, क्योंकि एंग्जाइटी तो क्रिएट हो ही गई. तो किसी भी आत्मा के कमजोर संस्कार को रहने नहीं देना, उसको संस्कार को चेंज करने की क्या करनी है, ज्ञान और शक्ति देनी है. इसलिए जब आप सेंटर पर आएंगे और आप विधि सीख लेंगे, आप कितनों के संस्कार को चेंज करने की शक्ति दे सकेंगे. है ना, पुण्य का कर्म ये, ठीक है. क्योंकि ये हमें याद रखना है कि वो फिफ्थ फोल्डर हरेक के पास है, तो हमें उनको अच्छी वाइब्रेशन देके उस फिफ्थ फोल्डर के कोई भी एक संस्कार को एक्टिवेट करना है, ठीक है. तो ये पांच फोल्डर के संस्कार हम लेके आ रहे हैं. दूसरी कौन सी चीज हम लेके आ रहे हैं अपने साथ जर्नी के ऊपर, हमारा हर कर्म. कौन कौन मानता है कि भगवान हमारा भाग्य बनाता है? दो बातें बचपन से सीखी थी. एक सीखा था जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और दूसरा सीखा था कि कर्म हमारा भाग्य बनाता है. जैसा कर्म वैसा भाग्य होता है. अगर परमात्मा हमारा भाग्य बनाए तो भाग्य कैसा होगा हमारा? परमात्मा अगर हमारा भाग्य बनाए तो भाग्य कैसा होगा हमारा? परफेक्ट होगा. और अगर परमात्मा हमारा भाग्य बनाए तो सबका कैसे होगा? एक जैसा अच्छा होगा. वो परम पिता परमात्मा है, वो दुख हरता सुख करता है, वो प्यार का सागर है, वो क्षमा का सागर है, वो हमारे भाग्य में दुख दर्द बीमारी ये सब नहीं लिख सकता. वो विश्व युद्ध उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है, किसकी मर्जी से हो रहा है ना. तो हर चीज में दे ईश्वर की मर्जी ऐसे नहीं. अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं, परमात्मा हमें सही कर्म करने की शक्ति देते हैं. कर्म किसको करना है? मुझे करना है. और जो कर्म मैंने किया उसका परिणाम आना ही है. हमारे सब कर्म बहुत अच्छे हैं, बीच बीच में कुछ गलतियां हुई होंगी कभी ना कभी इस जर्नी पर, इसलिए भाग्य बहुत अच्छा है. बीच में कभी कभी कोई मुश्किल वाली बात आ जाती है, लेकिन सारी पावर अब इस कर्म पर है. बॉल पकड़े एक हाथ में अपने. हमारी पावर कब है? जब तक ये बॉल हमारे हाथ से निकली नहीं. हमेशा इसलिए ध्यान से बोलना, ध्यान से करना, ध्यान से सोचना, क्योंकि एक बार सोच लिया तो बॉल हाथ से निकल गई. एक बल दिया तो बॉल हाथ से निकल गई, और जो निकल गई वो वापस आनी है. वापस नहीं आएगी, नहीं, वो वापस आनी ही है. कैसे आनी है? परिणाम के रूप में आनी है. तो अब पकड़े, कर्म क्या है? मेरा भाव जो हम करते हैं, सिर्फ वो कर्म नहीं है, मेरा करने के पीछे का इंटेंशन क्या था. आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, वो अच्छा कर्म है, लेकिन कर्म के पीछे का इंटेंशन क्या था? क्या इसलिए था ताकि वो भी आपके लिए कुछ करे, तो भाव थोड़ा हल्का हो गया? क्या इसलिए था ताकि लोग कहें आप बहुत अच्छे हैं, तो भी भाव थोड़ा हल्का हो गया? या इसलिए किया कि मुझे इससे कुछ फायदा हो, तो भी भाव हल्का हो गया? और अगर इसलिए किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस नेचुरल आया, तो भाव हायर हो गया? तो भाव की क्वालिटी क्या है, कर्म उतना पावरफुल होता है. तो पहला कर्म क्या है? हमारा भाव, भावना, हमारी इंटेंट. दूसरा हमारी सोच. तीसरा हमारा शब्द. एंड चौथा हमारा व्यवहार. ये चारों एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं और हमसे निकलकर बाहर जाती है. हमारा इंटेंशन, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर, चारों हमारे कर्म हैं. रिपीट करेंगे एक बार, क्या है हमारे कर्म? हमारी इंटेंशन, रिपीट करें, हमारी इंटेंशन, हमारी थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारा बिहेवियर. ये हमारी एनर्जी है जो हम क्रिएट करते हैं, ये बाहर जाती है. अब पकड़े, पहली चीज ध्यान रखें, बॉल फेंकते समय सब लोग कैसे फेंक रहे हैं वो नहीं देखना। कलयुग में अगर दूसरों को देखकर कर्म किया तो दूसरे की गलती कॉपी हो जाएगी। फिर अपने प्रोफेशन में बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है। चलता है ना, सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं तो सब लोग पाते भी वैसा ही हैं और भोगते भी हैं। इसलिए सब लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करना है। बॉल कौन सी फेंकनी है, कौन सी बॉल फेंकनी है, कौन सी बॉल फेंकनी है? वैसी ही बॉल फेंकनी है जैसी आप चाहते हैं कि आपके पास आए। जो बॉल आप चाहते नहीं कि आपके पास आए वो बॉल फेंकनी नहीं, लेकिन फेंक दी और फिर बोला मेरे पास ऐसा क्यों आया, तब तक इट इज टू लेट। तो अब पकड़ते हैं, भाव भावना सोच शब्द व्यवहार, ये बॉल हमने फेंक दी, ये बॉल इस वॉल पे लगेगी और आपके पास वापस आएगी। जब ये बॉल वापस आ रही है, ये सिचुएशन है, सिचुएशन हमारी बॉल होती है जो वापस आती है, लोगों का बिहेवियर बॉल होती है जो वापस आती है, हमारे शरीर की हेल्थ बॉल होती है जो वापस आती है, प्रकृति का उतार चढ़ाव भी बॉल है जो वापस आती है। रिपीट करें, डेस्टिनी क्या होती है, सिचुएशन, परिस्थितियां, बोले परिस्थितियां। अब अपने जीवन की परिस्थितियां देख लें, मेजॉरिटी बहुत अच्छी है, एक दो कोई मुश्किल चल रही होंगी, वो बॉल वापस आ रहे हैं। लोगों का व्यवहार, मेजॉरिटी आपके साथ बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं लगता, वो बॉल वापस आ रहे हैं। शरीर ज्यादातर परफेक्ट रहता है, कभी कभी कुछ होता है, दोनों तरफ से बॉल वापस आ रहे हैं। अब फिर के अब चलो करें, कर्म हमने फेंक दिया और भाग्य सामने से वापस आता है। अब इसको पकड़े ऐसे, जब कोई बात ऐसे आती है जो बहुत अच्छी आती है, उसमें तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं हमारे मन में कि भी मेरे साथ अच्छा कैसे हो गया, ऐसा उठता कभी माइंड में मेरे साथ अच्छा कैसे हो गया, नहीं अच्छा हो गया शुक्रिया। जो बॉल अनकंफर्टेबल आती है तो माइंड कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, या उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आंसर देना है, जो बॉल ऐसे आ रही है क्यों आ रही है, जो बॉल ऐसे आ रही है क्यों आ रही है, सब यहां फिक्स करना है। क्यों ऐसे आ रही है, क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। बोल दीजिए, ये बॉल क्यों आ रही है, मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। पक्का करें, फेंके बिना कुछ आ नहीं सकता, ना अच्छा ना मुश्किल वाला। फेंके बिना अच्छा भी नहीं आ सकता आपके पास, और फेंके बिना मुश्किल वाला भी नहीं आ सकता। अब इसको पकड़े, मुश्किल परिस्थिति आ रही है, क्या हम आने वाली बॉल को चेंज कर सकते हैं, क्या हम आने वाली बॉल को चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो बॉल तो निकल गई थी, आ गई। हमें ध्यान कब देना चाहिए था, जब हम फेंक रहे थे। सो पावर इज इन हियर, इसमें पावर नहीं है, ये तो फेंकी हुई वापस आती है। लेकिन जब ये फेंकी हुई वापस आ रही है, अभी हमारी पावर क्या है, जब ये फेंकी हुई वापस आती है इस पे हमारी कोई पावर नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अभी मैं इसके बारे में कैसा सोचूंगी, मैं इसके बारे में कैसा बोलूंगी, मैं अब कैसा व्यवहार करूंगी, वो मेरी क्या है, वो मेरी न्यू बॉल है। इसको पकड़ेंगे, हाथ को पकड़े ना तो इधर विजुअल याद रहेगा, ये वाली बॉल मेरे कंट्रोल में है नहीं, हम अभी कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे वो मेरे कंट्रोल में है, वो मेरे कंट्रोल में है। कल हमने क्या देखा, जैसी बॉल आ रही है वैसे ही नहीं फेंक देना, उसने ऐसा किया तो ऐसा तो होना ही था। तो हमने क्या किया, पहले ही गलत बॉल आ रही थी, अब तो ये समझ में आया वो गलत क्यों आ रही थी, मैंने गलत फेंकी थी। लेकिन जब गलत बॉल आ रही है तो फिर से अगर गलत फेंक देंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर वो फिर से आएगी, और हर अगली बार वो कार्मिक अकाउंट क्या होता जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, चलिए आंसर करें, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने कभी ना कभी कुछ किया था, मेरा पुराना कार्मिक अकाउंट सामने आ रहा है, लेकिन पावर आने वाले में नहीं है, पावर है मैं इस समय कैसा कर्म करूं। तो द पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट कर्म। आपकी जन्मपत्री आपको ये बताती है कि कौन सी बॉल आने वाली है, ये भी बता देती है कब आने वाली है। जैसे अगर आप अभी बॉल इधर फेंको तो कोई जो साइंस अच्छे से जानता है वो आपको फटाफट कैलकुलेट करके बताएगा ये बॉल इस स्पीड पे आएगी वापस, इस डायरेक्शन पे आएगी और इतनी देर में आपके पास वापस आ जाएगी। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बस जन्मपत्री वही है। जो जो बॉल हम फेंक कर आए तो वो जन्मपत्री किस दिन बनी थी? दो तीन दिन बच्चा पैदा हुआ जन्मपत्री बन गई। बच्चे ने तो कोई कर्म नहीं किया, मतलब आत्मा ने उस कॉस्ट्यूम में आकर तो कोई कर्म नहीं किया, लेकिन वो किसकी जन्मपत्री है? अब हम इस शरीर में अभी हैं, हम इस शरीर में बैठ के जो कर्म कर रहे हैं वो अभी भी भाग्य बना रहा है। मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, गर्भ में प्रवेश करूंगी, बच्चा पैदा होगा, मैंने इस शरीर में जो कर्म किए होंगे वो उस बच्चे के जन्मपत्री बन जाएंगे। ठीक है? क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो गए? टेंशन कोई बात की? इसके लिए टेंशन नहीं, इसके लिए अटेंशन रखना होता है सिर्फ, कि अभी के किए हुए कर्म अभी भी आते हैं सामने और वो हमारे साथ साथ चलने वाले हैं। वो सिर्फ अगले कॉस्ट्यूम में नहीं आएंगे जन्मपत्री में, वो उसके अगले में भी आएंगे। इसीलिए सब कुछ करो, सबके साथ रहो, सबका ध्यान रखो, सबकी सेवा करो, लेकिन प्रायोरिटी एक ही चीज है, मेरे कर्म, मेरे कर्म। उसकी उसको कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर वही क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। अब जब हम ये बॉल फेंकते हैं तो कोई बॉल 5 मिनट बाद वापस आ जाती है, कोई बॉल 5 साल बाद वापस आती है, कोई बॉल 100 साल बाद वापस आती है। और जब 100 साल बाद वापस आती है, मैंने अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया होता है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बॉल आनी चाहिए बाद में वापस या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, या इसी ड्रेस में आनी चाहिए साड़ी वापस, कैसे होना चाहिए? आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? अच्छा, इसी ड्रेस में आता तो अच्छा होता। क्यों अच्छा होता इसी ड्रेस में आता तो? अच्छा, पता चल जाता मैंने क्या किया था इसलिए आया। अभी भी नहीं पता चलता कि हमने क्या किया था उसके लिए आया, क्योंकि जब हम कर रहे थे हमने नहीं सोचा कि हम गलत कर रहे हैं। आपके पास जो क्राइम भी करके आता है ना, वो उस क्षण जब वो कर रहा होता है, अगले क्षण वो बोल सकता है मैंने गलत किया। जिस क्षण हम कुछ करते हैं, वी हैव अ वेरी लॉजिकल रीजन हम क्यों कर रहे हैं वो। तो अगर हमें पता हो ना ये गलत है, हम करेंगे ही नहीं। उस समय हमें लगता है ये ही राइट है। इसीलिए ज्ञान क्यों जरूरी है? ताकि सही कर्म की परख और समय पर सही कर्म का निर्णय। समय बीतने के बाद हमने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अच्छी बात है, रियलाइज तो हो गया, लेकिन वो वाली बॉल तो चली गई। लेकिन फिर अपने आप को अगर चेंज कर लिया ना, तो जब वो बॉल आएगी ना, तो हमारे पास उसको फेस करने की पावर होगी। तो अब जो मुश्किलें मेरे जीवन में आ रही हैं, जो लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जो कोई मेरे साथ बहुत 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 गलत कर रहा है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उनके साथ कभी ना कभी कुछ खेल खेल के आई मैं आत्मा। अब मुझे क्या करना है? हमारे पास सेंटर पर एक कपल आया था, उनका बच्चा, उसका किडनैप हुआ था और वो सब कुछ सीसीटीवी पे रिकॉर्डेड हुआ था, और फिर वो बच्चे ने उधर शरीर छोड़ दिया, वो भी सब उनका रिकॉर्ड हो गया था, तो उनको सब कुछ दिखा था बाद में। तो जब वो सेंटर पर आए, वो उस व्यक्ति को जानते थे जिसने वो किया था, तो उनके माइंड में बार बार वो ट्रबल कर रहा था कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। तो वो मेडिटेशन का कोर्स सीख रहे थे, तो करते करते वो बहन ने कहा मैं हर बार जब वहां कोर्ट में जाती, क्योंकि वो तो पकड़ा गया, सब कुछ वीडियो फुटेज पे था, सब फटाफट से सॉल्व हो गया था सारा कुछ, तो कहती मैं बार बार जब जाती हूँ कोर्ट में जाना पड़ता है, मुझे बहुत नफरत होती है उसको देख कर, सामने मेरे लिए बहुत मुश्किल है खड़े होना वहां पर। तो ऐसे बात करते करते रोते रोते कहती है ये इसने क्यों किया हमारे साथ। मैं कहा चलो अभी छोड़ो, अभी मेडिटेशन सीखते हैं। कहती नहीं नहीं ये हमारा इसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट था ऐसा। तुमने कहा नहीं अभी ये वाली बातें नहीं करते, अभी हम मेडिटेशन, क्योंकि जब बहुत मुश्किल परिस्थिति आती है उसमें कार्मिक अकाउंट नहीं बोलना होता है किसी को कुछ भी, बट उसको नॉलेज मिली तो उसने कहा अच्छा तो ये मेरा ही इसके साथ कार्मिक अकाउंट था, नहीं तो ये करे नहीं ऐसा मेरे साथ। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था अब क्या करना है इसके साथ। तो हमेशा याद रखना है दो लॉज काम करते हैं, एक लॉ ऑफ द कंट्री और दूसरा लॉ ऑफ कर्मा, दोनों काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंट्री ने ऑब्वियसली उस व्यक्ति के साथ जो डिसीजन लेना है वो लेना है और उसका कॉन्सिक्वेंस होना ही होना है। लॉ ऑफ कर्मा ने क्या करना है? तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना है, आपको इस व्यक्ति को फिर कभी नहीं मिलना, व्यक्ति मतलब इस कॉस्ट्यूम में नहीं, इस आत्मा को फिर से कभी नहीं मिलना है। कहती नेवर, आई नेवर वॉन्ट टू सी दिस सोल अगेन, ऐसे बोली। तो मैंने कहा फिर इस कार्मिक अकाउंट को तो क्लोज करना पड़ेगा ना इधर। तो कहती हाँ क्लोज करना है ना, तो क्या करना है? मैंने कहा फिर ये जो नफरत आप क्रिएट कर रहे हो ये कार्मिक अकाउंट को क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये कार्मिक अकाउंट को क्या कर रही है, ये कार्मिक अकाउंट को क्या करती जा रही है, और इंटेंगल और इंटेंगल और इंटेंगल कर रही है। तो हमेशा याद रखना है मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट को हम चेंज करते हैं, मतलब नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। कुछ जो ऐसे वाले कार्मिक अकाउंट होते हैं सामने वाला कहते हैं नहीं मुझको इस कार्मिक अकाउंट को पॉजिटिव भी नहीं बनाना है, मुझे चाहिए नहीं ये कार्मिक अकाउंट, तो उस कार्मिक अकाउंट को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। कार्मिक अकाउंट किसी आत्मा के साथ तब आपका क्लोज होगा जब वो आत्मा के प्रति एक भी संकल्प आपके यहां चलेगा ही नहीं, तो आपकी तरफ से कोई बॉल जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है, तो फिर वो कार्मिक अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, मतलब मेरा अब इस आत्मा के साथ कोई कर्म नहीं है। तो फिर उसने कहा इसको क्लोज करना है तो इसके लिए क्या करना है। मैंने कहा अभी हमें अपने आप को यहां हीलिंग करनी है, आप कानून को अपना काम करने दो, वो कर रहे हैं सब कुछ, तो सॉर्ट आउट हो गया, सब पता है उनको, वो कर देंगे सब जो उन्होंने करना है, आप अपने को ठीक करो, आप यहां से इसको ठीक करो। तो फिर जो डिफिकल्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो कहती इसके साथ कार्मिक अकाउंट क्लोज कैसे करना है। मैंने कहा वहां से वो आया क्यों, तो कहती यहां से कोई कर्म कभी ना कभी जरूर किया है। मैं कहा तो बस आप शुरू करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हमारे पास कुछ गलत एनर्जी आ रही है, हमें याद रखना है हमने कभी ना कभी उस आत्मा को कहीं ना कहीं कोई कष्ट दिया है। तो सबसे पहले हम मेडिटेशन में उन आत्माओं से क्षमा मांगते हैं जो आज हमें तंग कर रहे हैं, जो आज हमें तंग कर रहे हैं, वो तंग होकर आए हैं, कहीं ना कहीं हमने कुछ कर्म किया था। तो हम मेडिटेशन में उनको जाके बोलते नहीं हैं, हम मेडिटेशन में हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि मैंने कभी ना कभी आपको कुछ दर्द दिया है शायद, उसके लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगते, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। फिर दूसरा, आपने आज जो किया हम उसके लिए आपको क्षमा करते हैं। लॉ ऑफ द कंट्री ने अपना एक्शन लेना है, वहां नहीं हम कर रहे, हम यहां गांठों को फिनिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपको क्षमा करते हैं। आज से ये कार्मिक अकाउंट क्लोज होता है फॉर एवर। मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट के लिए हम करेंगे कि आज से मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और आज से हम न्यू कार्मिक अकाउंट स्टार्ट करते हैं, गुड क्वालिटी एक्सचेंज। तो पहले वो बहन को बहुत मुश्किल हुआ वो करना, कहती मैं उससे क्षमा मांग रही हूं। मैं कहा कुछ तो करके आए थे, ऐसा तो होता नहीं है कुछ, पर उसने करना शुरू किया, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये करने की। फिर उससे बोला नहीं जा रहा था तो उसने लिख के करना शुरू किया। कुछ दिन के अंदर, दिन मतलब 15-20 दिन, महीना लगा होगा उसको, रोज 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 करने से यहां का जो दर्द था उसके प्रति जो नफरत है, बच्चे को खोने का दर्द वो अलग, लेकिन उसके प्रति जो हेट्रेड थी ना अंदर, वो ऐसे सेटल होने लग गया, माइंड साइलेंट होने लग गया, एकदम साइलेंट, उस व्यक्ति के प्रति कोई सोच नहीं चल रही है। तो एक दिन उसने आके बोला, अब ना मेरे लिए कोर्ट में जाना थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, मैं बैठ पा रही हूं वहां पे जाके, पहले मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, मुझे बहुत नफरत होती थी। ये हमारे लिए होता है, दूसरे ने जो कर्म किया उसका हिसाब किताब तो उसका चलना ही चलना है। इसीलिए कल हमने देखा हम क्षमा किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। हेट्रेड हम पकड़ के रखते हैं तो वो प्रॉब्लम अपने को होती है। कल आपको वो बहन का एग्जाम्पल बताया, 35 इयर्स उसने हेट्रेड पकड़ के रखी थी, और जैसे ही उसने वो थॉट क्रिएट किया आई फॉरगिव दैट पर्सन, उसकी जीवन चेंज हो गई। वो व्यक्ति तो कहां है, क्या कौन है वो भी नहीं पता, उसकी लाइफ चेंज हुई है। तो फॉरगिवनेस कोई दूसरे पर फेवर नहीं है, फॉरगिवनेस खुद के कर्म की क्लेंजिंग है। ठीक है, तो आप अपने सारे कार्मिक अकाउंट को यहां से जाने से पहले देखना है, जो भी कार्मिक अकाउंट अनकंफर्टेबल है उसकी एनर्जी को चेंज करने के लिए उसके प्रति थॉट को चेंज करना है। बॉडी ठीक नहीं चल रही है, कार्मिक अकाउंट चेंज, न्यू बॉल, माय बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी। हम क्या है, वो ही बॉल वापस वापस फेंकते हैं, बार बार बोलते हैं वो बीमारी आ गई, वो बीमारी। ये एक हर एक थॉट एक बॉल है, हर एक थॉट एक एनर्जी है, वो ही आती जाएगी वापस। तो जैसा कर्म वैसा परिणाम, मतलब जैसा संकल्प वैसी सिद्धि, जैसी एनर्जी वैसा भाग्य। ठीक है, अब पांच वर्ड लिखते हैं। पहला वर्ड है धन। भाग्य इन पांच शब्दों में आता है, पहला धन, दूसरा अन्न, तीसरा मन, चौथा तन, और पांचवा जन, रिलेशनशिप। तो धन, घर में आने वाली वेल्थ, पैसा। सेकंड, घर में बनने वाला और हमने जो खाया वो अन्न। तीसरा मन, माइंड। चौथा तन, बॉडी। पांचवा जन, पीपल। ये इसी ऑर्डर में चलते हैं। जैसा धन होगा उसी धन से आपके घर का अन्न होगा, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसा तन होगा, और जैसे ये चारों होंगे वैसे आपके रिश्ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा? धन, एनर्जी ऑफ द मनी वी अर्न। आपके प्रोफेशन में आपको इस चीज का बहुत 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 बहुत, जितने बहुत लगाने लगा लो उतना ध्यान रखना है, जितने बहुत लगाने लगा लो, क्योंकि जितने लगाओगे उतने कम है। वो धन आपके घर आ रहा है, वो धन अमाउंट नहीं होता है, वो धन एनर्जी होता है। आपके घर में हर चीज उसी धन से खरीदी गई है। आज हम इधर जहां 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 बैठते हैं, जो यूज करते हैं, सब पैसे से है ना, तो हर चीज हमारे पास पैसे की एनर्जी से होती है। हमारे इर्द गिर्द जो कपड़ा हम पहनते हैं वो भी उस पैसे की एनर्जी का होता है, जो हम अन्न खाते हैं वो भी उस पैसे की एनर्जी का होता है, जिस मकान में हम रहते हैं वो भी उस पैसे की एनर्जी से बनता है, आपके बच्चों की पढ़ाई के पैसे भी उसी एनर्जी से जाते हैं। सब कुछ इज विद एनर्जी ऑफ मनी, हर चीज। तो वो पैसा कैसे होना चाहिए, पैसा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पैसा? पैसा दुआओं के साथ घर आना चाहिए, पैसा दूसरे को सुख देके आना चाहिए, पैसा श्रेष्ठ कर्म करके आना चाहिए। उसमें थोड़ी सी भी मिलावट नहीं चाहिए, थोड़ी भी नहीं, क्योंकि थोड़ी आई तो फिर धीरे 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 और होती जाती है। इस पे बहुत 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 अटेंशन रखें। खुद गलती तो नहीं करते, लेकिन गलत का साथ अगर देते हैं तो वो कौन सा कर्म बनेगा? गलत का अगर हम साथ देते हैं, गलत को अगर हम सहयोग देते हैं, तो हम गलत को बढ़ावा देते हैं और फिर उस गलत से हम धन भी कमाते हैं। तो इसीलिए पॉज। घोर कलयुग में जीकर घोर कलयुग जैसा जीना है फिर कैसा भी धन कमाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद जरूर रखना है वो कलयुग में भी वो धन का परिणाम जरूर आएगा। लेकिन सत्योगी आत्मा बनना है, अर्थात अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र श्रेष्ठ कर्मों से बनाना है, तो काम कम नहीं करना है। काम तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन काम सिर्फ वैसा ही करना है जो सही है, एक्यूरेट है। एथिकल की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, वो हाईएस्ट एथिकल होना चाहिए और वो दूसरे के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। काम भी ऐसे करना चाहिए, करें हाथ ऐसे ऐसे, दूसरे के फायदे के लिए करें। आज मेजॉरिटी प्रोफेशन ऐसे हैं, मेरे को इसमें से क्या मिलने वाला है, आपको इसमें से दुआएं मिलेंगे अगर आप इस तरह से काम करेंगे। और जिनके घर दुआएं आती है ना, उनके घर धन भरपूर आता है। लेकिन जिनके घर दुआएं आती है उनके घर सुकून आता है, जिनके घर दुआएं आती है उनके घर असंभव संभव हो जाता है। पॉसिबल है इस प्रोफेशन में हमेशा सही का साथ देना। हाँ जी, डिसीशन है ये एक्चुअली। अगर देखा जाए तो इस माउंट आबू में जब आप नीचे उतर रहे होंगे पहाड़ के ना, एक होटल है, उसका नाम हिलॉक होटल है। ये इस शहर का बहुत बड़ा वाला होटल है। तो एक दिन हम वहां सेशन कर रहे थे, तो वहां पर ऐसे ही बात हुई कि वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता तन के लिए मन के लिए, ऐसे सब। सेशन तो शहर के लोगों के लिए था। तो वो जो होटल की ओनर है वो उसके बाद आई तो कहती, अच्छा तो हम अपने होटल को वेजिटेरियन कर दे। मैं कहा बहुत अच्छा, इतना अच्छा थॉट आया, फटाफट अभी कर दो। तो उसने अपने शेफ को बुलाया, वो बोलता है, मैम आप क्या बोलते हो, होटल कैसे चलेगा इस तरह से। और फिर माउंट आबू मतलब गुजरात और राजस्थान दोनों का एक ही हिल स्टेशन है सिर्फ। तो उन्होंने कहा, गुजरात से सारे क्यों आते हैं इधर। तो उन दोनों का डायलॉग चल रहा था, मैं साइड पे खड़े होकर देख रही थी अब इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो वो ओनर कहती है, नहीं हम कर रहे हैं इसको, वन डिसीजन। लॉजिकली पढ़ने वाला है, उस तक लॉजिकली जाने वाला है, बट पावर थी उस टाइम आत्मा के अंदर। तो कहती, हाँ डन, हम इसको करने वाले हैं। तो फिर मैं भूल गई, मैं गई, मैं अगले साल वापस आई तो वो मिली। तो मैंने कहा, क्या हुआ आपका, चल रहा है अभी तक वेजिटेरियन? कहती, हाँ बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। मैं कहा, फिर बिजनेस? तो कहती, पहले ऐसे गया, मतलब पहले क्या चला गया, डाउन चला गया। कहती, डाउन चलने के बाद फिर टर्न हुआ, ऊपर गया, और अब इतना ऊपर गया कि पहले से ऊपर ज्यादा चला गया। मैंने कहा, ये ऐसे कैसे हुआ? डाउन तो गया, समझ में आया क्यों डाउन गया, उसके बाद अप क्यों गया? तो कहती, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जिनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है ये सोच के कि वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होटल के अंदर खाना खा रहे हैं, तो वो सारे यहीं आते हैं, वो दूसरी जगह कहीं जाते ही नहीं है। तो परमात्मा एक चीज हमें सिखाते हैं कि सत्य की नाव जो है ना, वो हिलती है, थोड़ी सी डोलती है, लेकिन वो सत्य की नाव कभी डूबती नहीं है, ये पक्का है। तो इसीलिए सत्य का हाथ पकड़ें, जो सही है उनका साथ दें, जो सही है उनको बचाएं, गलत को बढ़ावा न दें। आज दुनिया में इतने लोग गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कोई ना कोई तो मेरा केस लेगा ही लेगा। जिस दिन उनको पता चल गया कि कोई मेरा नहीं लेने वाला, आधे से ज्यादा चीजें तो वहीं खत्म हो जाएंगे। अब हम बोलते हैं, हाँ तो क्या है, हो जाएगा ना, इतनी सी बात से क्या होता है। लापरवाही अपने कर्म के अंदर। तो इसीलिए अगर आपने अपना, ये अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आपका अपना पर्सनल होने वाला है, इस पर कोई डिस्कशन होनी भी नहीं है अभी बिल्कुल भी। रॉन्ग राइट कोई और नहीं डिसाइड करेगा, रॉन्ग राइट अपना आप खुद डिसाइड करेंगे। सिर्फ क्राइटेरिया याद रखना कि आपके कर्म से सुख मिलना चाहिए, आपके कर्म से किसी सही के साथ गलत नहीं हो जाना चाहिए, और आपके कर्म से जो गलत था उसको सही सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत को सहयोग देना भी गलत में ही गिना जाएगा, कर्म के खाते में। लॉ ऑफ कंट्री में तो वो राइट माना जाएगा कि भाई आप हैं तो आपने दोनों में से किसी की साइड तो लेनी ही है, लेकिन लॉ ऑफ कर्म में वो दूसरी साइड पर आएगा। और जो आपके पास आया है सहयोग देने लेने के लिए, उसको जल्दी जल्दी सहयोग देके उसका केस पूरा करें। आपके पास इतनी लाइन लग जाएगी, इतनी लाइन लग जाएगी, आपको रात को भी सोने को टाइम नहीं मिलेगा। आप सिर्फ करके देखिए इसको। सिर्फ जो सही कर्म से दुआएं मिलती है ना, वो दुआएं असंभव को संभव करती है। जो सही कर्म से दुआएं मिलती है ना, वो और बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आती हैं। ये हमारी बहुत शॉर्ट विजन होती है, जो सोचती है ऐसे करने से पैसे आएंगे, ऐसे करने से आएंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट सही करिए और फिर देखो कितने आएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना सुकून आएगा घर के अंदर। बच्चों का भाग्य बनता है उस धन से। ध्यान रखना है, सब जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, मैंने सिर्फ वही करना है जो कैसा है, मैंने वही करना है जो कैसा है। हर जो केस आपके सामने आने वाला है उसमें एक रॉन्ग भी है, एक राइट भी है, तो राइट वाले को लेते जाओ। धीरे धीरे सबको पता होगा कि भाई जो राइट है उनको ही इनके पास जाना है, दूसरे को तो ये लेते नहीं है, तो दूसरा आपके पास आना बंद हो जाएगा। और जो राइट होंगे वो कहेंगे मुझे सिर्फ इसी के पास जाना है, क्योंकि ये इतना राइट करते हैं, यहां जाने से मेरा फायदा है। मैं खत्म, सिंपल है, बहुत इजी है करना, इसमें क्या डिफिकल्टी है। अगर दो दुकानें हैं, एक में बहुत एथिकल चल रहा है, एक में थोड़ा सा मिक्स चैरिटी है, धीरे धीरे सब उस तरफ जाना शुरू करेंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ये सिर्फ हमें करके देखना है, और इसके लिए क्या करना है, हिम्मत का एक कदम। मदद अपने कर्मों की मिलेगी, मदद परमात्मा की मिलेगी, मदद समाज की मिलेगी, दुआएं उन आत्माओं की मिलेगी। क्योंकि सिर्फ आपका कर्म सही नहीं होगा, देश की संस्कृति बदलते जाएंगे, देश के संस्कार बदलते जाएंगे। जो रेट बार बार बढ़ता जा रहा है जिन चीजों का, वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। सत्युग में वैसे कोई वकील नहीं होते हा? सत्युग में वकील नहीं होते, सत्युग में डॉक्टर नहीं होते, सत्युग में जज नहीं होता, क्योंकि सत्युग में कुछ गलत होता ही नहीं। तो हम वो सब कुछ सिर्फ ये लास्ट बर्थ के लिए करना है कलयुग के एंड में। उसके बाद हम ऐसे वाले अच्छे अच्छे प्योर पावरफुल संस्कार बनाकर सत्युगी दुनिया अभी से बनानी है, अभी से बनाने हैं। अपना कर्म हाइएस्ट एनर्जी का होना है। कैसे बनना है, हमें कैसे बनना है, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। राइट है ऐसी थॉट क्रिएट करना, क्योंकि हम एक बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी से आए हैं अभी, जहां ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को थोड़ा सा एनर्जाइज करना शुरू कर देंगे ना, आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि आपको फेथ हो जाएगा, आपको फेथ हो जाएगा कि हाँ सही का रिजल्ट मेरे साथ गलत कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है ऐसे? यस। किस किस को लगता है ऐसा पॉसिबल है? थ्योरी में भले अपने लिए नहीं करना, लेकिन थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल? हाँ तो बताओ, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। बस तो सत्योगी आत्माएं तो करके दिखाएंगे इसको। हो सकता है थोड़ा सा डिप हो किसी का, बस उस टाइम थोड़ा सा पकड़ के रखना होता है दृढ़ता के साथ, और फिर वो बहुत ऊंचा जाता है, बहुत ऊंचा जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुकून आ जाएगा घर के अंदर। और ये कर्म, एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, इधर रखो एक मिनट, एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये परिवार जिनके लिए आप वो धन कमा रहे थे वो भी आपके साथ नहीं जाएगा, जो आपने सब कमा के उनको दिया वो भी आपके साथ नहीं जाएगा, जिनके लिए आपने केस लड़े वो भी आपके साथ नहीं जाएंगे, जो उन्होंने किया वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ जाएगा सिर्फ हमारा किया हुआ कर्म। तो इसीलिए किसी के लिए भी नहीं, अपने घर वालों के लिए भी नहीं, गलत का साथ नहीं देना है, गलत का साथ नहीं देना है, किसी के लिए भी नहीं देना है। सबकी सेवा करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सही कर्म करते हुए। और इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका, रोज अपनी बैटरी को चार्ज करें, उसके बाद डिफिकल्ट नहीं लगेगा, नेचुरल लगेगा। और रोज बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे हम यहां से जाने से पहले, जाने के बाद सेंटर रोज जाएंगे। और जाने का डिसीशन हम कब लेंगे, यहां से जाने से पहले। यहां से जाने के बाद 3 महीने के लिए अपने आहार को भी सात्विक रखना, मतलब वेजिटेरियन खाना खाना 3 महीने के लिए सिर्फ। 3 महीने के अंदर आपको आपका गट, आपका पेट, आपका माइंड दोनों डिफरेंट दिखाई देगा। आज मेडिकल साइंस ने प्रूफ किया है कि गट एंड माइंड इज कनेक्टेड। क्या है? कनेक्टेड। तो यहां जो है उसका असर यहां पड़ रहा है। तो जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें हिंसा है, मृत्यु है, दर्द है, दुख है, डर है, वो इमोशन ना यहां के लिए अच्छी है ना यहां के लिए अच्छी है। कर्म की बात तो छोड़ ही देते, एनर्जी अच्छी नहीं है। तो 3 महीने खा के देखें, कर सकते हैं 3 महीने का एक्सपेरिमेंट। कौन 3 महीने एक्सपेरिमेंट कर सकता है, 4 दिन तो अभी हो जाएंगे इधर। सिर्फ 3 महीने आप खा के देखें, यहां सबसे पहले चेंज आने वाला है। लाइटर फूड, लाइटर माइंड। इसीलिए नवरात्रों में कैसा खाना खाते हैं, लाइटर फूड, क्योंकि डिवाइनिटी शक्ति को इन्वोक करना है। लाइटर फूड तो सब कुछ खाएं लेकिन शाकाहारी। और एक और चीज ध्यान रखें, जहां तक हो सके घर का खाना खाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन है। तो अभी बाहर कौन खाना बना रहा है, उसके मन की स्थिति कैसी है, वो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में है, वो परेशान है, वो दुखी है, वो दर्द में है, आप वो खाना खाएंगे आपके पास उसका दुख दर्द की थॉट्स आने लग जाएंगे। हमारे पास बहुत एविडेंस है इसका कि हाउ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन हु कुक्स इन्फ्लुएंसेस स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन हु ईट्स। तो जहां तक हो सके घर का खाना खाएं, और घर में खाना बहुत प्यार और शांति से बनना चाहिए। घर में खाना नहीं बनाएं, घर में प्रसाद बनाएं, ऐसा कॉन्शियसनेस रखें, प्रसाद बन रहा है। रसोई में कुछ चला के रखें, भजन, मंत्र, कोई भी ऐसी चीज जो हाई एनर्जी वर्ड्स हैं, ताकि आपका खाना एनर्जाइज हो जाए। ये आपको आपके प्रोफेशन में बहुत मदद करेगा। आपका माइंड को साइलेंट रखेगा, आपकी वाइब्रेशन को यहां रखेगा, आपकी क्लैरिटी और इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा। बहुत पावर देता है अन्न। और फिर खाना खाने के समय नो फोन नो टीवी, ये हो जाएगा। खाना खाने के समय नो फोन नो टीवी, 15 मिनट में तो खाना खाना है। और खाने से पहले 3 सेकंड रुकेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, आपकी शक्तियां इस खाने में हैं, और अपने संकल्पों को रिपीट करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सत्योगी आत्मा, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी, मेरा हर रिश्ता मजबूत, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सही के रास्ते चलता हूं। सिर्फ रिपीट करो, हर रोज करो, भी कुछ नहीं चेंज, सिर्फ संकल्प को रिपीट करते जाओ। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, आपको सामने से दिखाई देगा एक डिफरेंट भाग्य आपकी तरफ आते हुए। ये बॉल जो वापस सिर्फ अगले कॉस्ट्यूम में नहीं आती, वो अभी अभी आ जाती है सामने से, अभी अभी आती है। हिम्मत का एक कदम, पदम गुणा मदद परमात्मा की। इसीलिए हर केस लेने से पहले एक बार साइलेंस में बैठ के परमात्मा से सिर्फ पूछना, ये वाला मुझे लेना चाहिए या ये वाला मुझे नहीं लेना चाहिए। सिर्फ पूछना है एक बार, और जब वो रिश्ता बन जाएगा, अगर आपको लॉजिकली भी राइट लग रहा होगा, आपको एक थॉट सडनली आएगी, ये वाला तुम नहीं लेना, आएगा आपको ऐसे आंसर आएगा, उसके लिए वो रिश्ता बनाना है उसके साथ। चले साइलेंस में सीधा होकर बैठे एक मिनट। इसके बाद वर्कशॉप है, हमें गाइडेंस मिलेगी कि हमें कैसे क्या करना है, इसी रूम में होनी है। लेकिन वो शुरू होने से पहले ये एक मिनट डिसीशन लेना है, मुझे यहां से जाने के बाद 3 महीने के लिए 1 घंटा निकालना है सत्योगी आत्मा बनकर घर को स्वर्ग बनाना है। मेरा अन्न सात्विक है, मेरा तन स्वस्थ है, मेरा कर्म श्रेष्ठ है, मेरा धन दुआओं के साथ आता है। असंभव मेरे लिए संभव हो जाता है।